ईसु पंच नमो यारो सव पाव पणासनु मंगलाण च सवेसे पढ़म हवै मंगलम चत्तारि मंगलम अरहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरहंत लोगुत्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहंत शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतो धम्मो शरणं पवज्जामि क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः काल खिली न खिली मलयाचल की शुचि शीतल वायु सुगंध समेत मिली न मिली कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली भजले अरिहंत अरि रसना फिर अंत समय में हिली न हिली
कल बहुत बार एक मंत्र एक श्लोक स्मरण में आ रहा था, मंत्र को लेकर के, नमोकार को लेकर के, जिसमें तिर्यंचों को कैसे लाभ होता है नमोकार से, उसका चित्रण किया आचार्य शुभचंद्र स्वामी ने। अपन पढ़ चुके थे पहले, कृत्वा पाप सहस्राणि हत्वा जन्तु शतानि च अमुं मंत्रं समाराध्य तिर्यंचोपि दिवंगताः। सैकड़ों पाप कमाकर और हजारों प्राणियों की हिंसा करके भी जिन तिर्यंचों ने इस मंत्र की आराधना की, मरण काल में नमोकार का ध्यान किया, नमोकार का श्रवण किया, नमोकार में अपने मंत्र को मन को एकाग्र किया, वे तिर्यंच भी देवगति को प्राप्त हो गए। कितने ऐसे उदाहरण हैं। पंडित सुमेर चंद दिवाकर जी ने एक बार, हम जबलपुर में थे, सन 92 की बात है, 92, एक पत्र लिखा था और एक दोहा था उसमें, सुलझे पशुपदेश सुन सुलझे क्यों न पुमान, ना हरते भय वीर जिन गज पारस भगवान। उपदेश सुन, पशु सुलझे, जिनेंद्र वाणी का उपदेश को सुन, जिनेंद्र वाणी के उपदेश को सुनकर पशु सुलझ गए, मानव क्यों नहीं सुलझ सकता। नाहर तें भय वीर जिन, सिंह तो वीर जिन बना, गज पारस भगवान, और जो वह वज्रघोष हाथी था वह पार्श्वनाथ भगवान बन गया। कितनी बड़ी बात है। और भी ऐसे कई उदाहरण आते हैं। एक वृषभ था जो बहुत दुर्दशा को प्राप्त हो गया था, जब उसकी आयु क्षीण होने जा रही थी, तब एक पद्म रुचि सेठ वहां से निकल रहा था। उसने उसकी दुर्दशा देखी, किसी को उस पर दया नहीं आ रही थी, बल्कि लोग उसको छेड़ कर चले जाते थे, परेशान करके चले जाते थे। पद्म रुचि सेठ उसके पास गए और उसको सांत्वना देते हुए मरण घड़ी में महामंत्र सुना दिया। उसके भाव शांत हुए और वह पशु योनि से मनुष्य योनि में आ गया। वह राजपुत्र हो गया। नामकरण संस्कार होने पर वृषभ ध्वज ऐसा नाम उसको प्राप्त हुआ और किसी दिन वह भ्रमण करते करते अपनी पूर्व पर्याय के मरण स्थान पर पहुंच जाता है और उस स्थान को देखकर उसको जाति स्मरण हो जाता है। और जाति स्मरण होते ही उसने मन में विचार किया कि जब तक मैं अपने उस उपकारी को खोज नहीं लेता, ढूंढ नहीं लेता, तब तक मैं चैन से नहीं रह सकता, मुझे शांति नहीं मिलेगी। मेरा वो उपकारी कहां चला गया, यहीं तो मैं मरा था, और निश्चित रूप से यदि वो नहीं मिलता तो इतनी पीड़ा के साथ, इतने दुर्ध्यान के साथ मर करके मुझे तिर्यंच गति ही पुनः प्राप्त होती। वो उपकारी कहां है। फिर उसने विचार करके एक उपाय किया। उसने बड़े श्रेष्ठ चित्रकारों को बुलवाया और कहा कि जैसा जैसा मैं चित्रण कर रहा हूं तुम वैसे ही चित्र का निर्माण करो। एक अद्भुत चित्र का निर्माण हो गया और उस चित्र का निर्माण संपन्न होने पर वृषभ ध्वज राजकुमार बोलते हैं कि यह चित्र जिनालय में लगा दो। जो मनुष्य इस चित्र को देखकर आश्चर्यचकित हो जाए, अचंभित हो जाए और मंत्र मुग्ध होकर देखता ही रह जाए, उसकी मुझे सूचना दो। वहां पर उसने रक्षक नियुक्त कर दिए और समय व्यतीत होता चला गया। अब वो व्यापारी पद्मरुचि सेठ वापस कब आता इस स्थान पर? दीर्घ काल व्यतीत हो गया पर इसने अपनी आस नहीं छोड़ी। प्रतीक्षा कठिन परीक्षा होती है, धीरज टूटने लगता है, कभी कभी अनिष्ट विचार भी आने लग जाते हैं कि वो जीवित है या नहीं, कहीं कुछ हो तो नहीं गया आदि आदि। ये कथा पद्म पुराण में आचार्य रविशयन स्वामी ने बहुत सुंदर ढंग से दी है। और प्रतीक्षा करते करते एक बार वही व्यापारी उसी नगर में पधारा और चूंकि नमोकार का श्रद्धानी था, जिनाले जाकर उसने दर्शन आदि, वंदना आदि, जिन पूजा आदि सारे अनुष्ठान संपन्न किए, जिनाभिषेक को आदि लेकर सब कुछ किया उन्होंने। और फिर मंदिर में जो चित्र लगे थे उनको देखने लगा। कई मंदिरों में बड़े सुंदर सुंदर चित्र लगे रहते हैं, ये चित्र चौथे काल में भी लगा करते थे। तो उन चित्रों को देखते देखते फिर कोई उपसर्ग विजेता मुनिराज के चित्र भी होते हैं और कई माता के सपनों के भी चित्र होते हैं, फिर वृषभदेव प्रभु के आहार का चित्र भी होता है, ऐसे अनेक चित्र होते हैं। और कई मंदिरों में आज वर्तमान में महावीर स्वामी के तीर्थ शासन काल में चंदन बाला तीर्थंकर को आहार करा रही है, उसका भी चित्र बना होता है। कई मंदिरों में सुकुमाल स्वामी का चित्र होता है, किन्हीं स्थानों पर सुकौशल मुनिराज का भी चित्र होता है कि शेरनी उनको खा रही है, उपसर्ग करके उनको खा रही है और फिर वो ध्यानस्थ है। तो चित्र लगाने की परिपाटी प्राचीन है, चौथे काल में भी चली है और हो सकता है ये अनादि हो। ये सत्य है कि कोई विशेष व्यक्तित्व का चित्र होगा, मान लो एक सोलवे तीर्थंकर का अगर चित्र होगा तो सोलवे तीर्थंकर चूंकि अनादि नहीं है इसलिए वो जो चित्र होगा वो तो सादी होगा, आदि सहित होगा, पर चित्र मंदिर में अवश्य होते थे। तो जब वो उस चित्र के पास पहुंचा तो उसको वर्षों पुराना वो घटनाक्रम स्मृति पटल पर आ जाता है और वो देखता है कि ये तो मेरा चित्र है और मैं क्या कर रहा हूं यहां पर। फिर इधर एक वृषभ नीचे पड़ा हुआ है धरती पर, मैं उसको कुछ सुना रहा हूं। मैंने बहुत समय पहले एक बार किसी बैल को, किसी वृषभ को नमोकार दिया था। और इसी ऊहापोह में जब वो मग्न था उस चित्र को देखने में, रक्षकों ने इतनी लंबी प्रतीक्षा को संपन्न जानकर राजकुमार को सूचना दे दी कि ऐसी घटना हुई है। एक मनुष्य उस चित्र को तन्मयता से देख रहा, अवलोकित कर रहा है। राजकुमार अपनी जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में शीघ्रता के साथ जिनालय आए, चरण आदि धोकर के विधिवत प्रवेश किया और जैसे ही जिनेंद्र भगवान को प्रणाम करके उसने उस दिशा में देखा चित्र की ओर, और नीचे खड़े हुए उस मनुष्य को देखा, वो उसका हृदय गदगद हो जाता है कि ओ हो, यही तो मेरे उपकारी है जिन्होंने मुझे जानवर से इंसान बना दिया। मैं पशु योनि का एक दुखित प्राणी था, आज मैं एक राजा का पुत्र हूं। और वो ऐसे हाथ जोड़कर सेठ के सन्मुख जाते हैं। सेठ जी उनको विस्मित होकर देखते हैं कि मैंने आपको पहचाना नहीं, आप मुझे देखकर हाथ क्यों जोड़ रहे हैं। तब वो ऐसे दोनों हाथ खोलकर उनके पैर पकड़ के सिर टेक देता है, बोले कि आप तो कोई राजा जैसे लगते हो अथवा आप कोई राजकुमार हो, पर ये क्या कर रहे हो आप, मैं तो एक सामान्य व्यापारी हूं। बोले कि आप तो मुझे नहीं पहचान सके पर मैं आपको भूल नहीं सका। आप जिस चित्र को देख रहे हो आप जानते हो आप किसको नमोकार मंत्र सुना रहे हो। सेठ कहता है कि एक वृषभ था उसको मैंने नमोकार मंत्र सुनाया था, मरणासन्न था और हम लोग जीवों के प्रति बहुत करुणा भाव रखते हैं, तो उसकी वेदना मुझे सहन नहीं हुई, उसको मरणासन्न जानकर मैंने नमोकार मंत्र दिया था। और नमोकार देने के उपरांत उसकी आयु पूर्ण हो गई थी। तब राजकुमार कहता है उस आयु को पूर्ण करके वह वृषभ आज वृषभ ध्वज है, जिसने आपको हाथ जोड़कर प्रणाम किया, जिसने आपके चरणों में मस्तक टेक दिया। हे निस्वार्थ उपकारक, आपने जो मेरा उपकार किया है वह न तो कोई कुटुंब भी कर सकता है, न कोई माता पिता, न कोई मित्र, न कोई राजा। आपने मुझे पशु से मानव बना दिया। सेठ पद्मरुचि बड़े प्रसन्न होते हैं, बोले कि अरे तो आपने ही ये चित्र बनवाकर यहां लटकाया है। वृषभ ध्वज की आंखें भराती है, कहता है कि जिस दिन से मुझे पूर्व भव का स्मरण हुआ है, वो इसी स्थान पर मेरा मरण हुआ था, और जब से मुझे स्मरण हुआ है तब से मैं आपको ढूंढ रहा हूं। जब आप कहीं नहीं मिले तब अंत में मैंने ये चित्र बनवाया और मंदिर में लगवा दिया, और आज आपसे मिलकर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी निधि मुझे प्राप्त हो गई। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, आपको मेरे साथ ही रहना होगा, मैं आपको छोड़ ही नहीं सकता। और इस प्रकार की घनिष्ठ मित्रता दोनों में हो जाती है, दोनों फिर हमेशा साथ रहते हैं। ऐसी एक बड़ी ही सुंदर घटना पद्म पुराण में आती है। फिर भवांतर में दोनों क्या होते हैं उसका भी वर्णन आता है, तो वो तो ठीक है, एक अलग कथा हो जाएगी, पर ये नमोकार मंत्र का प्रभाव है। हिंसक प्राणी भी सद्गति को प्राप्त हो गए। कितने कितने जीवों का उद्धार हो गया नमोकार से। नाग नागिन भवनवासी देवों के द्वितीय निकाय नाग कुमारों के इंद्र और इंद्राणी पद को प्राप्त हो गए। जीवंधर कुमार ने जिस श्वान को नमोकार दिया था वह यक्ष देव बन गया। श्री राम ने मरणासन्न जटायु को नमोकार सुनाया और वह जटायु जो सम्यक दृष्टि जीव था, गुप्ती और सुगुप्त मुनिराजों के उपदेश से उसने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया था, और सम्यक दर्शन के साथ उसने अणुव्रतों को भी अंगीकार किया था, तो वह वीरता विरत अथवा संयता संयत था। उस देश संयम के प्रभाव से और अंत में नमोकार सुन के वह जटायु पक्षी ब्रह्म स्वर्ग में महर्धिक देव की पर्याय को प्राप्त हुआ था। आज भी पांचवें स्वर्ग में वो देव है। इसी तरह वसुदेव ने एक छाग को, एक बकरे को मरते समय नमोकार सुना दिया था, वो देव बन गया था। और एक रसायन से पीड़ित मनुष्य को भी उसने एक कुएं के भीतर, एक बड़ी विचित्र घटना के क्रम से मरते समय नमोकार सुना दिया था, वह भी देव पर्याय को प्राप्त हो गया था। ऐसे कितने कितने उदाहरण शास्त्रों में आते हैं। कौन जानता है कि किसकी किस भाव से शुरुआत हो जाए, कौन जिनत्व के अभिमुख कहां से हो जाए पता नहीं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो नरकों में सद्बुद्धि प्राप्त करके जिन भक्त बन जाते हैं, कुछ तिरंच गति में सुलझ जाते हैं, कई ऐसे हैं जो मनुष्य गति में उपदेशों के माध्यम से सन्मार्गी हो जाते हैं, कुछ देव गति में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। जब जिन महिम दर्शन होता है उन देवों को, तो इंद्र के साथ बहुत बड़ा परिकर होता है, विशाल समूह होता है देवों का, और जब किसी बड़े उत्सव में वो जाते हैं तो चारों निकाय के देव मिलकर के जाते हैं अपने अपने परिवारों के साथ। और वो महान उत्सव जिसमें इंद्र प्रमुख होकर के भगवान की भक्ति करता है अथवा जिनालयों का उत्सव करता है नंदीश्वर में, नंदीश्वर महाकल्याण पूज्यं करंति, नंदीश्वर के महाकल्याण की पूजा करते हैं। 8 दिन के वो कल्याणक होता है। कल्याणक माने पूजा का बड़ा महोत्सव होता है, उसको कल्याणक कहते हैं। यहां पर श्रवण बेलगोल में 9 दिनों का प्रधान उत्सव होता है। फिर वो जब तक वो मचान बंधा रहता है तब तक चिरकाल तक महीनों तक ये कार्यक्रम चलता रहता है। पर प्रधान जो मुख्य दिन होते हैं वो 9 दिन होते हैं। तो ऐसे जो बड़े बड़े उत्सव होते हैं उसमें देवलोग अपने पूरे परिकर के साथ, परिवार के साथ पधारते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। जब इंद्र का प्रभाव जानने वाले छोटे छोटे देव देखते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं कि यह इंद्र जिसके हम लोग बिल्कुल साधारण से किंकर है, किंकर अर्थात सेवक दास, ये इंद्र जिनकी सेवा कर रहा है वो कौन है। नमो अरहंताणम पद में तीर्थंकर के साथ और 6 प्रकार के केवली भी है। तो तीर्थंकर की महिमा का चित्रण करते हुए किसी एक नवयुवक ने हमें एक बहुत सुंदर एक, इसको घटना कहें या फिर एक दृष्टांत सुनाया था। वो ये था, जनेभ्य सुखिनो भूपाः, पद्म पुराण में श्लोक आता है, भूपेभ्य चक्रवर्तिनः, मानवों से अधिक सुखी राजा होता है, राजाओं से अधिक सुखी चक्रवर्ती होता है, और चक्रवर्तियों से अधिक वैभव, अधिक सुख संपन्नता देवगति के देवों में होती है, और देवों से अधिक वैभव उनके इंद्रों का होता है। और जब इंद्र अपने सिंहासन पर आरूढ़ होता है, अपनी सभा में बैठता, सुधर्मा नामक सभा में सौधर्म इंद्र विराजमान होता है, तब इंद्र के आसन में इंद्र के वाम हस्त की ओर, बाएं हाथ की ओर हमेशा राजा दाहिनी हाथ तरफ होता है, फिर रानी बाई ओर होती है। एक नियम है, गृह कार्येषु वामांगी, नारी जाति के लिए कहा गया है कि जो भी लौकिक कार्य है, गृह कार्य है, सांसारिक कामकाज है, उसमें नारी का स्थान वाम हस्त की ओर होता है, पति के बाएं हाथ की तरफ होता है। इंद्राणी का स्थान इंद्र के बाएं हाथ की ओर होता है। लेकिन धर्म कार्येषु दक्षिणा, धर्म कार्यों में इसका क्रम विपरीत होता है। इंद्र और इंद्राणी जब पूजा के लिए किसी अनुष्ठान में, यानी मनुष्य ही हमेशा जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते समय इंद्र और इंद्राणी की स्थापना अपने में कर लेते हैं और फिर भगवान की पूजा करते हैं, नित्य पूजा में भी, नैमित्तिक पूजा में भी। और इंद्रध्वज विधान का तो क्या कहना है, वो तो सबसे अद्भुत विधान है, और सबसे बड़ा विधान जो है वो सिद्ध चक्र विधान है। सिद्ध चक्र से बढ़ करके कोई विधान नहीं है। चक्रवर्ती लोग करते हैं वो कल्पद्रुम विधान होता है, और इस तरह के और भी बड़े बड़े विधान होते हैं, नंदीश्वर विधान भी होता है, दशलक्षण विधान भी होता है, अनेक अनेक प्रकार के विधान होते हैं। और विधानों में यंत्र का महत्व है, और जिनेंद्र भगवान के बिंबों का भी यथोचित स्थान है। अब गृह कार्येषु वामांगी, धर्म कार्येषु दक्षिणा, धर्म कार्यों में एक विपरीत क्रम होता है कि जब भगवान के अभिमुख दोनों बैठेंगे इंद्र और इंद्राणी, तो उसमें एक नियम है कि भगवान के दाहिनी हाथ की तरफ पुरुष को रहना होगा और बाएं हाथ की तरफ उसकी स्त्री रहेगी। तो ऐसा करने पर जो पुरुष और स्त्री भगवान के अभिमुख होकर के बीच में एक पीठ होता है जहां पर द्रव्य और सारी सामग्री का प्रबंध होता है, और इस तरफ इंद्र बैठते हैं, उस तरफ इंद्राणी बैठती है। तो अब देखो आप कि पुरुष के किस हाथ की ओर उसकी पत्नी है, आप कल्पना कर पा रहे हैं क्या? जिस दृश्य का हम चित्रण कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो अपन भगवान के राइट साइड में पुरुष वर्ग है, भगवान के लेफ्ट साइड में मातृभगिनी वर्ग है जो उनकी अर्धांगिनी है। तो यहां पर क्रम बदल जाता है, यानी भगवान के श्रीवत्स के सामने खड़ा नहीं रहा जाता। जब भी भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान के एकदम सामने खड़े होकर के कभी भक्ति नहीं की जाती, न दर्शन, न वंदन, न स्तवन, न अर्चन, पूजन, कुछ नहीं, एक बगल में खड़े होकर के करते हैं। ये विनय है। तो उससे क्या होगा कि भगवान पुरुष के दाहिने हाथ की ओर हो जाएंगे और माता बहनों के बाएं हाथ की ओर हो जाएंगे। तो उनका प्रशस्त अंग वाम अंग माना जाता है, और वामा शब्द भी स्त्री का पर्यायवाची शब्द है, और इधर पुरुषों का दाहिना हाथ और दाहिना अंग प्रशस्त माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में भी ऐसे ही होता है कि अगर आपके शरीर में तिल के निशान जो है वो दाहिनी ओर है तो पुरुष के लिए शुभ है, बाईं ओर है तो फिर नारियों के लिए शुभ है। तो इस तरह खड़े होने पर आप देखिएगा, अब इसमें आहार दान के समय भी इसी बात का ध्यान रखना होता है, और कुछ स्वर शास्त्रियों का तो ये कहना है कि तरल पदार्थ साधु को बाईं ओर से दीजिए और ठोस पदार्थ दाहिनी ओर से दीजिए तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ये बड़ी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं। और चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में देखो तो फिर लेफ्ट साइड जो है उसको यिन पार्ट बोलते हैं, राइट में यांग बोलते हैं। पुरुषों में यांग एनर्जी अधिक होती है, माताओं में यिन एनर्जी अधिक होती है। यिन एनर्जी जो होते हैं भावुकता का प्रतीक होती है, यांग एनर्जी जो होती है वो बल का, पुरुषार्थ का प्रतीक होती है। इसके कलर्स भी अलग अलग हैं, 24 रंग होते हैं, उनमें से कुछ पुल्लिंग वर्ण होते हैं, कुछ स्त्रीलिंग वर्ण होते हैं। तो ये सारी बहुत सारी बातें हैं। तो अभी जो बात चल रही थी वो ये थी कि इस तरह से ये भक्ति और धर्म कार्य किए जाते हैं। तो उसमें वाम हस्त की ओर माता बहनों का स्थान, अर्धांगिनियों का स्थान होता है, बेटियों का स्थान होता है, और साधु के दाहिने हाथ की तरफ या भगवान के दाहिने हाथ की तरफ वो होता है पुरुषों का स्थान होता है, भाई बंधुओं का स्थान होता है। तो जब सिंहासन पर इंद्र के वाम हस्त की ओर इंद्राणी बैठती है तो इंद्राणी का जो कंठ हार होता है उसकी कांति से उस सुधर्मा नामक इंद्र की, सौधर्म इंद्र की शक्र की सभा में उपस्थित समस्त देवों के आभूषणों की कांति तिरोहित हो जाती है, यानी फीकी पड़ जाती है। इतना उस हार का तेज होता है, कंठ हार का, कि सबकी कांति फीकी पड़ जाती है। और कई बार इंद्राणी के हार पर बहुत सारी देवियां और अप्सराएं ऐसे दृष्टिपात करती हैं और प्रसन्न होती, उनके मुख मंडल पर एक स्मित प्रकट हो जाता है, वो प्रसन्न हो जाती है कि कितना सुंदर हार है इंद्राणी का। इंद्राणियों की दृष्टि अपने इंद्र की ओर होती है, बार बार वो अपने स्वामी को देखती रहती है और इंद्र की दृष्टि जिनेंद्र पर होती है। और जब ये जन्म कल्याणक से लेकर दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक, इंद्र इतना प्रफुल्लित हो जाता है कि वो बिल्कुल हर्ष से उन्मत्त हो जाता है। वो जब नृत्य करता है तो जो नृत्यकारिणी अप्सराएं हैं वो भी इंद्र की कला को देखकर अचंभित हो जाती है। और इंद्र का ध्यान उस समय कला की ओर नहीं रहता, वो भगवान की भक्ति में डूब करके नृत्य करता है। और ऐसा नृत्य करता है, कितने रूप बना लेता है वो, और सारे दर्शक मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, आह्लादित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। हजार हजार आंख बना करके वो भगवान के जन्मकालीन रूप के दर्शन करता है। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने अरनाथ भगवान की स्तुति करते हुए लिखा है, तव रूपस्य सौंदर्यम् दृष्ट्वा तृप्ति मना पिवान् द्व्यक्षः शक्रः सहस्राक्षो बभूव बहु विस्मयः। आपके रूप की सुंदरता को देखकर दो आंखों वाला शक्र, सौधर्म इंद्र का एक नाम शक्र भी है, तृप्तिम अनापिवान, संतुष्ट नहीं हुआ, और संतुष्ट न होता हुआ वह इंद्र सहस्राक्ष बभूव, हजार आंख वाला बन गया। अपनी विक्रिया से उसने अपनी हजार आंखें बना ली और देखता ही चला गया, देखता ही चला गया भगवान को। सहस्र नयन भी इंद्र का एक नाम होता है। अब वो जो समव शरण में विराजमान जिनेन्द्र देव है, तीर्थंकर भगवान है, सारा संसार इंद्र के वैभव से अचंभित है और सारे इंद्र जिनेन्द्र के वैभव से अचंभित है। सौ सौ इंद्र भगवान के चरणों में नत है, उनके मस्तक नम्री भूत है। देखते ही चले जाओ, देखते ही चले जाओ, ऐसा लगता है देवलोगों के पास तो ये क्षमता है कि उनकी पलकें झपकती नहीं, वो तो एक टकटकी लगाकर देखते ही रहते हैं भगवान को। लेकिन मनुष्यों को ऐसा लगता है कि काश हमारी पलकें भी न झपकती। यहां पर हमें देवों से ईर्ष्या हो रही है क्योंकि उनको भगवान लगातार देखने मिल रही हैं, मिल रहे हैं, और हमें बार बार बीच में व्यवधान आ रहा है। ऐसे पलक झपक जाती है तो लगता है कि ओहो, बिल्कुल बीच में एकदम अड़चन आ गई। जिनेन्द्र भगवान किसको देख रहे हैं, इस पर अगर दृष्टिपात करें तो पता चलता है कि उनके बहिर्वैभव को तो सब लोग देख सकते हैं, लेकिन उनके अंतर्वैभव को केवल वो ही देख सकते हैं। सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरि रज रहस्य विहीन। वो अपने अंतर वैभव में मग्न है, उनको जो प्राप्त हो चुका है उस आनंद में वो डूबे हुए हैं और उनका संपूर्ण रूप, उनकी पूरी छवि, उनकी मुख मुद्रा उस आनंद को अपने अंदर छुपा नहीं सकती। उनका आनंद दर्शकों को अनुमान में आता है कि क्या आनंद होगा इनके भीतर जब इनके मुख के दर्शन से हमारे चिरकालीन संताप, हमारे बड़े बड़े संकट, बड़े बड़े दुख हम देखते ही साथ भूल जाते हैं और हमारा हृदय भी प्रफुल्लित हो उठता है, आनंदित हो उठता है। इनके अंदर कितना आनंद होगा। जो बाहर से इतने सुंदर हैं वो अंदर से कितने सुंदर होंगे। क्या अलौकिक है भगवान का स्वरूप। कुछ ऐसे भी विचार आते हैं जिनको शब्दों में प्रस्तुत करना भी कठिन है भगवान के विषय में। बस स्मरण करके, भगवान के स्वरूप का स्मरण करके, गुंगा केरी मीसरी, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है जो मूक है, बोल नहीं सकता, और उसको कोई मिश्री से बनी हुई मिठाई खिला दो और पूछो कैसी लग रही है, तो कई ऐसे भी रहते हैं जिनको सुनाई भी नहीं देता, कुछ ऐसे हैं सुनाई देता है, बोल नहीं पाते। तो खात खात मुस्काए, वो खाते खाते मुस्कुराता है, कुछ बोल नहीं पाता। बस भक्तों की कई बार ऐसी दशा होती है कि भक्ति करते करते कोई शब्द नहीं सूझते, बस केवल एक प्रसन्नता और एक मुस्कान रहती है। भक्ति की धारा में आनंद ही आनंद है। तो भगवान जिस आनंद में मग्न है उसके विषय में भगवान हमेशा अपनी दिव्य ध्वनि में कहते हैं कि हे भव्य जीवो, इस आनंद का मैं इकलौता स्वामी नहीं हूं। मुझसे पूर्व अनंत हो चुके हैं, मेरे पश्चात अनंत होंगे। तुम्हें प्राप्त करना हो तो भटको मत और अहंकार में अटको मत। मैं मार्ग बता रहा हूं, मैं मार्ग बना नहीं रहा हूं। मार्ग अनादि है, मुझसे पहले अनंत सिद्ध हुए हैं, मुझे भी सिद्धत्व मिल जाएगा आयु पूर्ण होते साथ। तुम यदि मुझे नहीं छोड़ना चाहते तो मेरे साथ चलो। न जाने कितने भगवंतों ने अपने से ये बात कही होगी और अपन उनसे यही कहते रहे, आते हैं भगवान, आते हैं, थोड़ा कुछ बाकी रह गया है काम, निपटा के आते हैं। निपटाते निपटाते पता नहीं कितने जन्म निपट गए, अभी तक कर्म नहीं निपटे। आज पुनः अवसर प्राप्त है, अवसर का लाभ उठाना विवेक की कसौटी है। अवसर को गंवाना दुर्भाग्य से बड़ा भाग दुर्भाग्य है, क्योंकि पहली बात तो दुर्भाग्य से अवसर प्राप्त नहीं होता, सौभाग्य से प्राप्त होता है, और सौभाग्य से प्राप्त हुए अवसर को खोना उस दुर्भाग्य से भी बड़ा दुर्भाग्य है। उस दुर्भाग्य ने तो अवसर ही नहीं प्राप्त करने दिया, और इस दुर्भाग्य ने प्राप्त अवसर को गंवा दिया। कितनी बड़ी बात है। नमो अरहंताणम, जितना जितना अपन इसकी गहराई में जा रहे हैं, पढ़ते समय उतने ही अपन भाव विभोर हो रहे हैं। नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम, जैनम जेतु शासनम।